आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। गुड इवनिंग, आज है 7 मार्च, दिन मंगलवार। मैं हूं नितिन ठाकुर, दिन भर में आपका स्वागत। मेघालय और नागालैंड में आज मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था। कोनराड संगमा और नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री बन गए हैं। पीएम मोदी इस मौके पर मौजूद थे।
I, Sri Nephew Rio, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance.
तो कैबिनेट में किसे जगह मिली किसे नहीं, गठबंधन का धर्म कितना निभाया गया, इस पर बात होगी। उधर राहुल गांधी का लंदन दौरा लगातार चर्चा में है, उनके शब्दों को बराबर तौला जा रहा है। कल ब्रिटिश संसद में राहुल आरएसएस पर खुलकर हमलावर हुए और एक आतंकी संगठन से तुलना की। इसके बाद सियासत में हलचल मचनी थी, सो मची, तो इसका असर क्या होगा वो भापेंगे। और एक सैटेलाइट प्रशांत महासागर में गिरने जा रहा है, या यूं कहिए जानबूझकर गिराया जा रहा है। इसरो ने अपने MT-1 सैटेलाइट को 3 साल के लिए 2011 में भेजा था, लेकिन उससे 12 सालों तक काम लिया गया और अब नष्ट करना वक्त का तकाजा है। तो चैलेंज क्या है ये समझेंगे। एक सर्वे कहता है कि छोटे शहरों के स्टार्टअप्स को बड़े शहरों के स्टार्टअप्स से बेहतर फंडिंग मिल रही है। नौकरियां भी छोटे शहरों में पहले से ज्यादा मिल रही हैं। क्या बतला रहे हैं बदलते आंकड़े, इसे डिकोड करेंगे और आखिर में सुनेंगे भौचक। लेकिन पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस। अंकित स्टूडियो में आ गया।
बांग्लादेश के ढाका की एक बहुमंजिला इमारत में हुआ ब्लास्ट, हादसे में गई 8 लोगों की जान, 100 हुए घायल। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल करने से रोकने के डर के कारण 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा छोड़ी। दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर पहुंची CBI, लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू से करेगी पूछताछ। तिहाड़ जेल पहुंची ईडी की टीम, मनीष सिसोदिया से की पूछताछ। केरल के CM विजयन ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, सिसोदिया की गिरफ्तारी पर जताया विरोध। सपा की 18 मार्च से कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, 2024 का रोड मैप तय करेंगे अखिलेश। पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी में होली मनाने पर विवाद, 15 हिंदू छात्र हुए जख्मी।
ये है दिन भर, मैं हूं नितिन ठाकुर। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में लोकतंत्र का एक उत्सव पूरा हुआ। चुनाव बाद मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों के शपथ ग्रहण खत्म हो गए। त्रिपुरा के बाद आज नागालैंड और मेघालय में मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह था।
I, Sri Nephew Rio, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister of the State of Nagaland.
मेघालय में कोनराड संगमा की पार्टी NPP, UDP और भाजपा ने मिलकर सरकार बनाई है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। संगमा दूसरी बार CM बने, 2 मार्च को नतीजे आए थे और इनमें संगमा की पार्टी 26 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। नागालैंड में नेफ्यू रियो 5वीं बार नागालैंड के CM बने हैं। यहां NDPP और BJP के गठबंधन ने बहुमत हासिल किया था और यहां भी प्रधानमंत्री पहुंचे। हमने मेघालय और नागालैंड दोनों जगह मौजूद अपने रिपोर्टर्स से आज वहां जो हलचल रही उन्हें समझा, उनके बारे में जाना। तो मेघालय की नई सरकार के शपथ ग्रहण पर बात करते हैं आज तक रेडियो रिपोर्टर सूर्याग्नि रॉय से। सूर्याग्नि, मेघालय में कोनराड संगमा दूसरी बार CM बने हैं, इसे उनकी राजनीतिक ताकत में इजाफा माना जाना चाहिए और कितना तय था कि वो फिर से कुर्सी पर बैठेंगे?
देखिए, पहले तो कोनराड संगमा की ये दूसरी जीत है। पिछले इलेक्शन 2018 में सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मिला था नहीं उनको, लेकिन फिर भी अलायंस में दूसरे छोटे पार्टीज के साथ UDP, PDF इन पार्टीज को साथ में लेकर पिछली बार मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो बना था, जिसमें BJP भी शामिल थी। इस बार जो देखा गया कि जब रिजल्ट्स निकले तब सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का जो टैग है वो NPP नेशनल पीपल पार्टी को मिला, जिसके चेयरमैन कोनराड संगमा है। मिला उनको 26 सीट जो उनके पिछले साल का जो उनका जो रिजल्ट निकला था 19 सीटों से कई ज्यादा उनको मिले। और उसके बाद जिस पार्टी को मिला सबसे ज्यादा वो 11 था, UDP नामक। तो आप डिफरेंस समझ ही सकते हो कि एक बहुत ही क्लीन मार्जिन से कोनराड संगमा की पार्टी को मतदान जो है वो उनके फेवर में मिला था।
अच्छा, सरकार का स्वरूप किस तरह का है? मंत्रिमंडल किस तरह बटा है गठबंधन की सरकार का?
देखिए, मंत्रिमंडल का गठन जो हुआ है वो इस प्रकार से किया गया है कि टोटल 12 लोगों का कैबिनेट है मेघालय में, और उसमें 8 जो हैं वो एनपीपी से होंगे, बाकी 4 जो हैं वो जो दूसरे अलायंस के पार्टनर्स हैं उनसे होंगे। पहले उनको 31 एमएलएओं का सपोर्ट था, 26 के बाद 2 बीजेपी, 1 इंडिपेंडेंट और 1 और 2 HSPDP नामक एक पार्टी की तरफ से। उसके बाद देखा गया कि जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी UDF, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, उनको जो 11 सीटें मिली थी उन्होंने भी समर्थन कर दिया, और एक दूसरी पार्टी PDF, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी फ्रंट, उन्होंने भी इस 2 एमएलए के साथ को समर्थन जो है वो दे दिया। तो कुल गवर्नमेंट जो है वो 45 एमएलए की है, मैजिक फिगर 31 था। और इस पूरे सिचुएशन से जो मंत्रिमंडल निकल कर आ रहा है उसमें 12 का टोटल फिगर है, जिसमें 8 एनपीपी और 4 दूसरे जो अलायंस के पार्टीज हैं उनको दिए जाएंगे। उसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फंडा है, जहां पर इस 12 से 8 जो लोग हैं वो खासी हिल्स को रिप्रेजेंट करेंगे और 4 गारो हिल्स के।
बहुत शुक्रिया सूर्याग्नि। नागालैंड में भी शपथ ग्रहण की हलचल को समझते हैं। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के साथ और किन मंत्रियों ने शपथ ली और सरकार का स्वरूप कैसा है? हमने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर ऋतिक मंडल से।
देखिए, बहुत ही अहम है इस बार जो पूर्वोत्तर भारत के जो नागालैंड के जो आज शपथ ग्रहण का जो समारोह हो रहा कोहिमा में। पहली बात तो ये जरूर है कि ये पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और उसके साथ साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वो पूर्वोत्तर भारत के किसी राज्य के शपथ ग्रहण के अनुष्ठान में पहुंचे, चाहे वो मेघालय हो या फिर नागालैंड। दरअसल इस बार के चुनाव में नागालैंड में जिस तरीके से रुझान सामने आई काफी रोचक है। हम जानते हैं कि NDPP और बीजेपी की जो सत्तारूढ़ सरकार है, चुनाव से पहले उन्होंने एक गठजोड़ तैयार किया था, उसके तहत वो चुनाव में आए थे और आज उसमें जिस तरीके से भारी बहुमत से उन्हें जीत हासिल की, तो उसके बाद नेफ्यू रियो जो NDPP और नागालैंड के एक वेटरन लीडर है वो 5वीं बार के लिए आज उन्होंने शपथ लिया। ला गणेशन राज्यपाल उन्होंने शपथ जो पाठ करवाया, और अहम बात है कि उनके अलावा और नए 9 जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनको आज चुना गया, उनके भी आज शपथ ग्रहण किया गया, जिनमें मैं जिक्र करना चाहूंगा 2 शख्स का। एक तो है तेनजिम इमा अलाउंग जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नागालैंड के, वो काफी एक रोचक कैरेक्टर आप कह सकते हैं, बहुत ही अहम किरदार इस बार के गठबंधन के लिए। जो NDPP और जो बीजेपी का जो गठबंधन था उसमें इस जो तेनजिम अलाउंग है वो महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाए। इसके साथ साथ बखूबी वो सोशल मीडिया में अपने पोस्ट और उनके बयान के चलते काफी चर्चे में रहते हैं। और दूसरे और जिस तरीके से नागालैंड पिछले 60 वर्षों में इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि एक 2 बीजेपी जो महिला विधायक है वो इस बार जो विधानसभा के दहलीज पे पहुंचे, उनमें से जो कुर्से है S. Kurse।
ऋतिक, चैलेंजेस पर बात करते हैं सरकार की, तो बॉर्डर का विवाद हो या मिलिटेंसी की घटनाएं हो, नेफ्यू रियो तो 5वीं बार शपथ ले रहे हैं, उनके लिए ये कितने बड़े चैलेंजेस हैं?
दरअसल जिस तरीके से नागालैंड की अगर जिक्र की जाती है तो आप जानते हैं बखूबी जिस तरीके से मिलिटेंसी या फिर आए दिन जिस तरीके से लगातार लंबे वक्त से ये अपने कुछ मसलों से जूझ रहा है। वहां पर ईस्टर्न नागालैंड की अगर बात करें तो वहां पर डेवलपमेंट को लेकर काफी लोग नाराज थे। वहां पर स्थिति ऐसी थी कि वहां पर जितने भी नागालैंड जैसे बॉर्डर स्टेट है तो उसके चलते कई सारे जो मिलिटेंट आउटफिट्स है रेबल्स से एक बातचीत सरकार के साथ चल रहा है लंबे वक्त से, तो इन सब चीजों को एड्रेस करना है। और जैसे हम जानते हैं कि नागालैंड में आफ्सपा यानी आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जिसको हटाने की बारी बारी कोशिश की जा रही है। वहां पर पूरे नागालैंड में 72 ऐसे थाना इलाका है जिनमें से 15 थाना इलाकों में से हाल ही में जो है आफ्सपा जो है उसको हटाया गया है बाकायदा। लेकिन बीजेपी या फिर अमित शाह यानी गृह मंत्री का माने तो उनका कहना है, उन्होंने प्रचार में भी इस बात पर जोर दिया कि आने वाले 3 से 4 सालों में बाकी सब इलाकों में से नागालैंड के वहां से भी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से हटाया जाएगा। धीरे धीरे जो टॉक है वो चल रहा है, जो जितने भी वहाँ पर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप्स है, रेबल्स लीडर है, दरअसल ये मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा, ये पहली बार रहा नागालैंड के लिए जहाँ पर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ, ना किसी तरीके से उपद्रव हुआ मिलिटेंट या फिर रेबल्स के तरफ से। तो एक अहम सुझाव, एक अहम नतीजे पर नागालैंड के लोग पहुंचे हैं, जिस तरीके से पूर्वोत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी की वहाँ की जितने भी लोकल्स या फिर रीजनल पार्टी है, जैसे कि NPP मेघालय में या फिर NDPP इन सब पार्टियों के साथ एक बतौर अलायंस जिस तरीके से बढ़त उन्हें मिल रही है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, खासकर 2023 जिस साल में पूरे देश भर में कई सारे विधानसभा चुनाव होना है, तो इस पर आज ये सरकार का गठन हो जाना काफी बेहद और महत्वपूर्ण है इस पूर्वोत्तर भारत के अगर राजनीति की बात की जाए तो।
शुक्रिया ऋतिक। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी एक बार फिर से चर्चा में हैं और इस बार चर्चा की वजह है उनका ब्रिटेन दौरा। लंदन में थिंक टैंक चैथम हाउस में अपने भाषण में राहुल ने भारत में लोकतंत्र, चीन, जम्मू कश्मीर, महिलाओं के खिलाफ हिंसा समेत बहुत सारे मुद्दों पर बात रखी, लेकिन जिस मुद्दे ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो शायद आप तक भी खबर पहुंची हो, तो वो है RSS पर उनकी टिप्पणी। उन्होंने संघ को कट्टरवादी फासिस्ट संगठन बताते हुए उसकी तुलना की है मिस्र के इस्लामी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से। उन्होंने ये भी कहा कि RSS ने देश के सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। सुनिए राहुल ने क्या कहा।
कॉल द RSS फंडामेंटलिस्ट फैशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज बेसिकली कैप्चर्ड प्रीटी मच ऑल ऑफ इंडियाज इंस्टीट्यूशंस।
एंड मे बी फॉर दोस हु डोंट नो, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट द RSS इज?
RSS is a, you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood. And the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards.
संघ पर की गई इस तीखी बयानबाजी के बाद बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी पर हमलावर हो गए। तो एक सवाल यह है कि राहुल पहले भी बीजेपी और RSS को लेकर हमलावर तो रहे हैं, पहले भी उन्होंने संघ को फासिस्ट कहा था, पर एक सियासी समझ ये भी कहती है कि संघ पर राहुल की जो ये टिप्पणियां होती हैं वो बीजेपी को इलेक्टोरली फायदा पहुंचाती हैं। और क्या राहुल के इस तरह के बयानों को लेकर पार्टी के अंदर भी किसी तरह का रिजेंटमेंट है, ये जानने के लिए हमने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर मौसमी सिंह से।
देखिए, पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने RSS पर निशाना साधा है, और इस बारी तो विदेशी जमीन पर उन्होंने जिस तरह से RSS की व्याख्या की, जाहिर तौर पे बीजेपी को यह रास नहीं आएगा। आपको याद हो कि महाराष्ट्र में जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उस वक्त भी राहुल गांधी ने ये कहा था कि सावरकर एक कायर थे और वो कोई देशभक्त नहीं थे, वो तो अंग्रेजों से भीख मांग रहे थे अपनी जान की। तो इस तरह से लगातार जयशंकर पर जब उन्होंने निशाना साधा तो बोला कि जयशंकर ने कहा कि हम चीन की अर्थव्यवस्था से नहीं लड़ सकते, चीन की अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था से काफी बड़ी है। कभी भी उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि ये कायरता की निशानी है और सावरकर कायर थे, RSS की विचारधारा ऐसी ही है, ये कायरता जो है RSS की विचारधारा में है कि अगर आप किसी से लड़ नहीं सकते तो आप उसको आप अपने हथियार डाल दीजिए, वरना आप किसी अकेले शख्स को 5-10 लोगों के साथ भी पीटेंगे। तो इस तरह की उन्होंने जिक्र ये किया था, आपको याद हो जब वो विदेश में उन्होंने अभी हाल ही के वक्त में सावरकर की किताब का मेंशन करते हुए कहा कि मैंने ये सावरकर की किताब में पढ़ा कि सावरकर को बहुत संतुष्टि हुई जब उन्होंने एक मुसलमान को पीटा 5 लोगों के साथ, और ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। तो एक तरीके से राहुल गांधी का लगातार रणनीति के तौर पर RSS पर वार हो रहा है। कांग्रेस में इसको लेके मतभेद भी है कि हर बारी आप अगर संघ पर वार करते हैं तो इससे संघ एक्टिवेट होता है, और कांग्रेस क्योंकि एक संघ जो है जमीन से जुड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी शाखाएं हैं, इससे कांग्रेस को जो है ज्यादा नुकसान पहुंचता है क्योंकि बीजेपी और संघ की फोर्स जो है मल्टीप्लाई कर जाती है। पर उसके बावजूद भी राहुल की ये दो टूक पार्टी को भी है कि बिना अडानी पर वार किए हुए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला नहीं कर सकते, उनके उद्योगीकरण को लेकर जो नीति है, और बिना संघ पर वार किए हुए हम बीजेपी की विचारधारा पर हमला नहीं कर सकते।
मौसमी, भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही कुछ बातें चल रही थी कि कई और यात्राएं होनी हैं, तो क्या आने वाले वक्त में राहुल फिर से किसी पदयात्रा में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि इस बात से तो इनकार नहीं कोई भी कर रहा है कि इस पदयात्रा ने राहुल गांधी और कांग्रेस को फायदा तो पहुंचाया है।
देखिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा में जो आक्रमण है वो विदेशी जमीन पर बरकरार रखे हैं और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है अब इसी आक्रामक तेवर में नजर आएगी। हाथ से हाथ जोड़ो के बाद भारत जोड़ो यात्रा का जो दूसरा चरण है वो शुरू होने वाला है अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से यहाँ पे पोरबंदर तक गुजरात के। तो अपने आप में कांग्रेस को लगता है कि ये गेम चेंजर के तौर पर न सिर्फ कार्यकर्ताओं को और सक्रिय करेगा पर जो राहुल गांधी बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लड़ाई है उसमें राहुल गांधी की छवि को और दुरुस्त करेगा और ये इसके चलते जो विपक्ष में राहुल गांधी का कदकाट है वो और बड़ा होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी आपका। 12 साल पहले 12 अक्टूबर 2011 को इसरो और फ्रेंच अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने साथ मिलकर एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा था। सैटेलाइट का नाम था मेघा ट्रॉपिक्स 1। मेघा संस्कृत का शब्द है और ट्रॉपिक्स फ्रेंच से लिया गया है। इसे MT-1 भी कहते हैं। इसका वजन लगभग 1 टन है। इसका मकसद क्षेत्रीय और वैश्विक जलवायु मॉडल से जुड़े जरूरी डेटा को इकट्ठा करके भेजना था और MT-1 को 3 साल के लिए भेजा गया था लेकिन फिर इससे 12 सालों तक काम लिया गया। बढ़िया चला ये। अभी इसके भीतर 125 किलोग्राम ईंधन है और आज इसे प्रशांत महासागर में सुरक्षित ढंग से गिराने की कोशिश की जानी है। प्रशांत महासागर में एक जगह है जिसे पॉइंट निमो कहते हैं। इसे सैटेलाइट्स का कब्रगाह कहा जाता है। इस पॉडकास्ट के रिकॉर्ड करते वक्त तक MT-1 को गिराया नहीं गया है। इसरो का कहना है कि उन्हें एरोथर्मल सिमुलेशन के जरिए पता चला है कि MT-1 के किसी भी बड़े टुकड़े के एरोथर्मल हिटिंग से बचने की संभावना नहीं है। इसे दोबारा से पृथ्वी के आंतरिक कक्ष में लाना एक चैलेंजिंग काम है क्योंकि MT-1 को प्रोसेस के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। MT-1 के मिशन, उसको गिराने की प्रक्रिया, चैलेंजेस को समझने के लिए हमने बात की आज तक रेडियो के साइंस एडिटर शिबू त्रिपाठी से।
किसी भी सैटेलाइट को डी ऑर्बिट करने के लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस यूज होता है जिसमें बेसिकली धीरे धीरे उसके ऑर्बिट को लोअर किया जाता है। MT-1 जो है वो करीब 800-850 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे इस वक्त घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ और अगस्त 2022 से इसरो कंटिन्यूसली इसके ऑर्बिट को लोअर कर रहा है। लगभग 18 बार ऑर्बिटल मैन्यूवर्स किए गए हैं जिसमें इसके ऑर्बिट को नीचे किया गया है। आज जो बड़ा इवेंट होने वाला है उसमें यह है कि दो ऑर्बिटल मनोवर्स किए जाएंगे जिसमें इसको एक पाथ पे भेज दिया जाएगा जिससे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होके क्रैश कर जाए और पैसिफिक ओशन के आसपास वो बर्न अप हो जाए। जो बड़े चैलेंजेस हैं किसी भी सैटेलाइट को डी ऑर्बिट करने में वो ये हैं कि आपके पास मौजूदा फ्यूल कितना है, फ्यूल रिजर्व कितना है उस स्पेसक्राफ्ट में। अभी लगभग 125 किलोग्राम फ्यूल इस MT-1 सैटेलाइट में है जो कि इनफ है इसको कम्प्लीटली गिराने के लिए और पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए। उम्मीद है कोई भी बड़ा चंक या बड़ा सैटेलाइट का पार्ट लैंडफॉर्म को हिट नहीं करेगा और ये पॉइंट नीमो के आसपास कहीं पर क्रैश करके एटमॉस्फेयर में ही बर्न अप हो जाएगा। MT-1 मेघा ट्रॉपिक्स 1 इस सैटेलाइट को जॉइंटली इंडिया और फ्रांस ने लॉन्च किया था 2011 में। पिछले 10 सालों में ये ट्रॉपिकल बेल्ट को स्टडी कर रहा है। ट्रॉपिकल बेल्ट वो एरिया है जहाँ पे सनलाइट सबसे ज़्यादा डायरेक्टली पड़ती है। उसकी वजह से जो प्लैनेट वाइड इफेक्ट जो होते हैं क्लाइमेट में, एनवायरनमेंट में, वो सबसे ज़्यादा होते हैं। ट्रॉपिकल बेल्ट अपने आप में जाना जाता है कि एक प्लैनेट वाइड क्लाइमेटरी इफेक्ट को ट्रिगर कर सकता है और आजकल जैसे पिछले 10 सालों में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की जो इश्यूज़ बढ़ी हैं उनके ऊपर ये कंटिन्यूसली डेटा प्रोवाइड कर रहा था इंडिया, फ्रांस, दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज को और एक एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग का भी काम कर रहा था।
शिबू, हम समझना चाहेंगे कि MT-1 या ऐसे किसी भी सैटेलाइट को नष्ट नहीं करने के जोखिम कितने बड़े होते हैं?
देखिए, MT-1 को 2011 में लॉन्च किया गया था। पिछले 10 साल से वो लगातार कम कर रहा है। इसको 3 साल के लिए इनिशियली लॉन्च किया गया था, उसके बाद इसका मिशन एक्सटेंड कर दिया गया था। मिशन कंप्लीट होने के बाद UN की एक गाइडलाइंस हैं कि जो भी लो अर्थ ऑर्बिट में आपका जो ऑब्जेक्ट है या तो आप उसको डीकमीशन कीजिए और डी ऑर्बिट कीजिए। डी ऑर्बिट करने के पीछे जो बड़ा कारण है वो ये है कि उसके कंटिन्यूस स्पेस में होने की वजह से ऑर्बिटल कोलिजन्स का रिस्क बहुत बढ़ जाता है और दूसरा इशू ये है कि एक्सीडेंटल ब्रेकअप होने की वजह से स्पेस जंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। UN और दुनिया भर की जितनी भी स्पेस एजेंसीज हैं वो स्पेस जंग के ऊपर काफ़ी काम कर रही हैं कि अर्थ के अराउंड जो भी डिब्री है उसको कैसे कम किया जाए और इसी मुहिम के तहत इसरो भी इस सैटेलाइट को क्रैश कर रहा है। इसको क्रैश करने के पीछे जो बड़ा कारण एक और ये है कि अगर इसको कंटिन्यूस स्पेस में छोड़ा जाए, ये अभी लगभग 800-850 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे अर्थ के ऊपर घूम रहा है और ट्रॉपिक्स को स्टडी कर रहा है, अगर इसको कंटिन्यूअस छोड़ दिया जाए तो ये लगभग 100 साल तक उसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा जब तक इसका कंप्लीट फ्यूल बर्न ना हो जाए या ये खुद से ना गिर जाए। इसकी वजह से इसरो इसको एक कंट्रोल्ड वे में री एंटर करा रहा है अर्थ एटमोसफियर में, जहां पे ये बर्न अप हो जाएगा।
थैंक यू शिवू। अब पहुंची हो सड़क तुम गांव, जब पूरा गांव शहर जा चुका है। ये पंक्तियां महेश चंद्र पुनेठा की हैं और आज बात इसलिए क्योंकि कल होली है और ब्लूम वेंचर्स इंडस वैली की एनुअल रिपोर्ट 2023 के मुताबिक 2022 के दौरान छोटे शहरों में जो स्टार्टअप्स चल रहे हैं उनकी फंडिंग में 41% की बढ़ोतरी हुई है और जिन शहरों को स्टार्टअप्स का हब माना जाता है उन शहरों के स्टार्टअप्स में फंडिंग 48% घटी है। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले हमने एक और डेटा पर बात की थी, इसके मुताबिक छोटे शहरों में नौकरी के मौके बढ़ रहे हैं जबकि बड़े शहरों में कम हुए हैं। दोनों डेटा को पास पास रखकर देखने पर धीरे धीरे इकोनॉमी के बदलते चेहरे के साफ संकेत मिलते हैं। अब लोग बाग अपने शहर में और अपने शहर के लिए काम करना चाहते हैं और एक अच्छी बात है, इससे बड़े शहरों का बोझ भी कम होगा। BYIV की रिपोर्ट ये भी कहती है कि नॉन मेट्रो सिटीज के स्टार्टअप्स को मिलने वाली डील का शेयर भी बढ़ गया है। 2019 में ये 1.6% था और अब 2.8% है। हालांकि बढ़ोतरी मामूली है लेकिन बढ़ोतरी तो है। ये आंकड़े हमें और क्या बताते हैं, कोविड इसके लिए कितना जिम्मेदार है, ये समझने के लिए हमने बात की बिजनेस टुडे की भव्या कौशल से।
देखिए, हमें एक चीज समझनी चाहिए कि तीन टाइप के स्टार्टअप्स होते हैं, अर्ली स्टेज, मिड स्टेज एंड लेट स्टेज, है ना। जो लेट स्टेज स्टार्टअप्स होते हैं वो बड़े स्टार्टअप्स होते हैं, उनमें जो है यूनिकॉर्न्स आते हैं, सुनिकॉर्न्स होते हैं, जो यूनिकॉर्न बनने वाले या जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन टच करने वाली है ना। तो जितने भी लेट स्टेज स्टार्टअप्स है या जो मिड स्टेज स्टार्टअप्स है वो मेट्रो सिटीज़ में है। एंड हमने पिछले 2 सालों में देखा है कि बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस अराउंड प्रॉफिटेबल बिजनेस या सस्टेनेबल बिजनेसेस बनाना अगर किसी को है तो मतलब एंटरप्रेन्योर्स भी इस बात को लेके बहुत सीरियस हो रहे हैं एंड फाउंडर्स भी और VC एंड प्राइवेट इक्विटी फर्म्स भी इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस हो रहे हैं कि उनको प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर अब फोकस करना पड़ेगा। एंड इस वजह से जो है फंडिंग सिनेरियो में भी रिस्ट्रिक्शंस आए हैं। जो VCs है या जो PE फर्म्स है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं कंट्रोल, कि पहले जो है वो पैसा लगा रहे थे, सोच नहीं रहे थे, डील्स क्लोज कर रहे थे, 2-2 दिन में डील्स क्लोज होती थी, 3-3 दिन में डील्स क्लोज हो रही थी, वैसे अब सिनेरियो नहीं होता है। एक और चीज़ जो हुई है वो ये है कि जितने भी हम हिंटरलैंड्स की बात करें या Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में बात करें तो कोविड ने क्या किया है कि इन सारे सिटीज़ को जो है कहीं ना कहीं एक पुश दिया है, बिकॉज़ कोविड में लोग जो है अपने होम टाउन्स में शिफ्ट हो गए थे, राइट। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि वहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो फॉस्टर हुई है, लोकल सप्लाई चेन्स स्ट्रेंथन हुई है। तो जो VC फर्म है वो ये देख रहे हैं कि अच्छा ठीक है, लेट स्टेज फंड्स, लेट स्टेज कंपनीज या स्टार्टअप्स में हम पैसा अब नहीं डाल रहे क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत हैवीली फंडेड है, तो हमें अपॉर्चुनिटीज कहीं और ढूंढने दो। तो वो उनको अपॉर्चुनिटी वो Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज में मिल रही है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा इनोवेशन हो रहा है ना। अब एक चीज़ जो लाइफ में किसी को भी चाहिए कुछ भी करने के लिए वो है इंटरनेट, है ना। एंड हमने देखा कि प्रोलिफरेशन ऑफ इंटरनेट की वजह से कितना रिसर्च इनोवेशन ड्राइव हो रहा है हमारी कंट्री में। सो वो रिसर्च इनोवेशन जो है Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में हो रहा है, जो इन्वेस्टर्स नोटिस कर रहे हैं एंड एज अ रिजल्ट वो फंडिंग जो है वहाँ पे जा रही है।
भव्या, छोटे शहरों के स्टार्टअप्स और नौकरी के मौके को बूस्ट करने वाले जो आंकड़े हम देख रहे हैं उसमें कोविड के अलावा और क्या कारण आपको लगते हैं जो शामिल हैं?
एक चीज़ जो आ रही है वो ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो धीरे धीरे करके इक्वलाइज होंगी विद इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, राइट। अगर हम तेलंगाना का एग्जांपल ले, आपने देखा है कि तेलंगाना में जो है एक रिसर्च एंड इनोवेशन हब तो है ही टी हब, बट वहाँ पे एक प्रोटोटाइपिंग सेंटर भी बन गया है जिसका नाम है टी वर्क्स, बस टी हब के एकदम बगल में है, है ना। अब छोटे छोटे शहरों में क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है एंटरप्रेन्योरशिप की। जहाँ एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा वहाँ पे जॉब क्रिएशन भी बढ़ेगा। सो अगर हम देखें तो हर चीज़ का इफ़ेक्ट पैंडेमिक में जो जो चीज़ें हुई उसका ये इफ़ेक्ट हुआ है कि जो हमारी टीयर टू टीयर थ्री सिटीज़ है वो बहुत स्ट्रेंथन हुई है. जॉब्स ऑफकोर्स अभी भी मुंबई दिल्ली बेंगलोर में ही है मेजॉरिटी की, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड है कि जहाँ पे जो टीयर टू टीयर थ्री सिटीज़ हैं वहाँ पे जॉब क्रिएशन बड़ा है पहले से एंड वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं. अब जैसे केरला हो गया या तेलंगाना का मैंने आपको एग्जांपल दिया, वैसे असम बिहार इन सब की गवर्नमेंट्स जो है अब धीरे धीरे नोटिस कर रही है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि हम उस पर्टिकुलर स्टेट का या सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे स्ट्रेंथन करें, वहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और कैसे फॉस्टर करें, एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे डेवलप करें. सो ये है.
बहुत बहुत शुक्रिया भव्या. और अब स्टूडियो में आ गए हैं जमशेद कमर सिद्दीकी, सुनते हैं भौचक.
तमाम खांचों से इतर दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक बुरा मानने वाले, दूसरे बुरा करने वाले. मानने वाले और करने वाले समय और परिस्थिति जन्य कारणों से एक दूसरे से रूपांतरित होते रहते हैं, लेकिन ये आम दिनों की बात है. दो एक दिन साल के ऐसे भी हैं जब ये फर्क कर पाना मुश्किल हो जाता है कि बुरा किसके साथ हुआ, किया किसने. इस दिन ये दोनों एक ही गाल पर लाल हरा पीला सब पोत कर कहते हैं, बुरा न मानो, होली है. ऐसा ही कुछ कहा है सिर्फ 200 करोड़ रुपए की ठगी मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने. उन्होंने एक्ट्रेस और बकौल चंद्रशेखर उनकी बेबी गर्ल प्रिंसेस बी बोम्मा प्यार और अपनी प्रिय जैकी जैकलीन फर्नांडिस को पत्र लिखकर होली की बधाई दी है और दुनिया वालों से ना कहकर भी कहा है जैसे कि बुरा न मानो, होली है. जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वो राजा की तरह देश के तथाकथित सबसे सुरक्षित जेल में रहते हैं, न सिर्फ रहते हैं जबरन वसूली तक कर लेते हैं और उसके लिए उनको मोबाइल नंबर भी सहज ही उपलब्ध हो जाता है. पर आप एक चीज के लिए उनको दाद दें कि उन्होंने अपनी प्रेमिका को पत्र लिखकर होली का संदेश दिया है. वो चाहते तो टेक्स्ट, व्हाट्सएप, इंस्टा या सिग्नल के जरिए भी मैसेज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पुरानी परंपराओं का निर्वहन किया है और मोबाइल का उपयोग वसूली तक ही सीमित रखा. बाकी क्या है, बुरा न माने, कल होली है. शुभम तिवारी, आज तक रेडियो.
बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद. तो आज के दिन भर को यहीं देते हैं विराम. बताइएगा कैसा लगा ये एपिसोड radio@aajtak.com पर. और कल होली है, खूब रंग उड़ाइए, रंग जमाइए, अपना ख्याल रखिए. लेकिन कल भी आज तक रेडियो आपकी सेवा में हाजिर रहेगा, तो हमारे पॉडकास्ट भी सुनिएगा. और एडवांस में कह देता हूँ, हैप्पी होली. आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है कुंदन ने, साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने. मेरा नाम है नितिन ठाकुर. अपना बहुत ख्याल रखिए, आज तक रेडियो सुनते रहिए और आज तक रेडियो की तरफ से हैप्पी होली.